भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में पहली बार आसियान देशों का प्रतिनिधित्व वहां पर हो रहा है। समारोह से एक दिन पहले यानी आज अलग अलग देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय चर्चा भी हो रही है समुद्री सहयोग और सुरक्षा के मुद्दों पर। आसियान देशों में थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस तथा ब्रुनेई शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 90 के दशक में जब भारत की अर्थव्यवस्था को खोला गया तब इसे लुक ईस्ट पॉलिसी कहा गया और 2014 से इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम मिला है। और अब आसियान देशों के नेताओं का भारत में आना इस पॉलिसी के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। तो इसी सिलसिले में बात की है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ भारत के डॉक्टर श्रीराम चौलिया जी के साथ और उनसे पूछा कि क्या ये भारत के लिए व्यापार और संपर्क के रणनीतिक क्षेत्रों में स्वयं को एक शक्तिशाली सहयोगी के रूप में प्रस्तुत करने का ये एक सफल अवसर है। तो डॉक्टर श्रीराम चौलिया का कहना है,
जी हाँ बिल्कुल अनिता जी, ये अप्रत्याशित है कि गणतंत्र दिवस पर 10 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एकजुट होकर दिल्ली आए और हमारे मेहमान बने, तो ये ऐतिहासिक तो है ही और दूसरा ये भी दर्शाता है कि आसियान जो है समूह है, 10 राष्ट्र है उसमें, वे सभी भारत को उभरते हुए देखना चाहते हैं,
जी।
भारत की जो शक्ति है उसे बढ़ते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं और वो चाहते हैं कि भारत उनके जो प्रांत है, जो पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया, वहां पे बड़ा किरदार निभाए, क्योंकि इसके पीछे कई कारण है। एक तो चीन बहुत ही हावी हो चुका है वहां पे और वो समझते कि भारत एक पॉजिटिव रोल वहां पे अदा कर सकता है जो कि चीन को कुछ हद तक बैलेंस कर पाए। दूसरा वो ये भी नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा हद से ज्यादा निर्भरता उनकी चीन पर ही बनी रहे, उनके भारत के साथ जैसे आपने कहा व्यापार बढ़े, रिश्ते बढ़े, फौजी तौर पर भी ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो, तो इससे वो समझते कि एशिया, पूर्वी एशिया जो कहते हैं, जो कि एक प्रतिद्वंद्विता का मैदान है, वहां पे कुछ हद तक वो भारत का आश्वासन चाहते हैं, तो इसीलिए वो आए हैं। और मोदी जी ने जो इन्हें न्योता दिया है ये भी मेरे ख्याल से एक नई कदम है, क्योंकि पिछले कई दशकों से हम जब भी हम ये दिवस मनाते आ रहे हैं तो सिर्फ एक ही हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं या चीफ गेस्ट, दस एक साथ दिग्गजों को लाना ये मेरे ख्याल से अभूतपूर्व है और ये यादगार रहेगा।
जी, आपने चीन के प्रभुत्व की बात की है तो तालमेल बिठाने की बात मान सकते हैं, क्योंकि कई आसियान देशों के साथ चीन के महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध हैं, तो कुछ के हैं सीमा विवाद।
जी हाँ, वो तो है। वैसे उसमें भी चीन ने एक तरह से दबदबा अपना बढ़ा लिया है, जैसे फिलीपींस और वियतनाम, ये जो दो राष्ट्र हैं
जी,
इनकी चीन के साथ दक्षिण चीन समुद्र में विवाद था और अभी भी है, लेकिन इनकी जो अभी फिलहाल की जो सरकारें हैं वहां पे फिलीपींस में और वियतनाम में, ये समझ गई है कि अमेरिका पे निर्भर करना बेवकूफी होगी, क्योंकि ट्रंप अपने अपने चाल खेल रहे हैं चीन के साथ और पिछले दशकों से आशा रही है कि अमेरिका शायद वहां पे टिक कर रहेगा और चीन का मुकाबला करेगा, लेकिन अब वो लग नहीं रहा। तो ये जो दो राष्ट्र हैं ये भी अब समझ गए कि चीन को शायद बैलेंस करने के लिए अमेरिका पे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तो इसीलिए वे भी एक तरफ से चीन को अच्छे संबंध बढ़ाने की कोशिश में हैं। तो साथ साथ मूलभूत मसला तो ये है कि चीन इतना बड़ा है और ये सब जो दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्र है आसियान के, ये बहुत छोटे छोटे हैं और चीन आसियान को लड़ाता है, उसके अंदर फूट डालता है और एक एक को कमजोर करता है, दूसरे को बढ़ावा देता है, इस तरह के जो खेल है कूटनीतिक, तो इन सब से अगर उन्हें ऊपर उभरना है तो फिर से इन छोटे देशों को भारत की जरूरत पड़ेगी और मेरे ख्याल से हम भी इसी फैक्टर को लेकर रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं।
जी, संबंधों की बात है तो एक बात आती है कि देशों के बीच में कनेक्टिविटी कितनी है, और उसके लिहाज से सोचें तो म्यांमार थाईलैंड हाईवे तो बन ही रहा है जो 2020 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा एक चिंता का विषय ये भी रहता है कि आसियान देशों के बीच में जो व्यापार है और टूरिज्म है, क्या वो अपने महत्व तक पहुंचा है जो उनसे जो इसकी अपेक्षा की जा सकती है?
अनिता जी, काम बहुत हमें बाकी है करना, क्योंकि आसियान की जो पोटेंशियल जो हम कहते हैं ना, वो हमने अभी तक पूरी तरह से उसको निचोड़ा नहीं है
जी।
आप देखिए, कोई 60-70 बिलियन डॉलर तक की सालाना हमारा व्यापार है उनके साथ, बाकी चीन के साथ ये सैकड़ों बिलियन डॉलर का करते हैं काम। आंकड़ों के हिसाब से तो हम चीन के काफी पीछे हैं आसियान के साथ व्यापार में, लेकिन एक चीज है कि कनेक्टिविटी का आपने जिक्र किया, ये भी बहुत जरूरी है। हमने बहुत देर लगा दी, ये जो ट्राइलैटरल हाईवे है, मैदान कॉरिडोर है, और हालांकि म्यांमार हमसे जुड़ा हुआ है बिल्कुल, और ये पड़ोसी है, तो मेरा मानना है कि मानसिकता में भी हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। भारत में ये पुरानी सोच है कि पड़ोसियों का मतलब है सार्क, दक्षिण एशिया है
जी।
लेकिन पड़ोसी का असली मतलब है दक्षिण पूर्व एशिया भी पड़ोसी ही है। ये हमें, मेरा मानना है कि बदलाव लाना पड़ेगा सोच कि तभी जाकर हम इन रिश्तों को और आगे तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। फिलहाल तो सुस्ती है, अभी देखिए इन देशों में कोई मायूसी भी है कि भारत में ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये कोई 10-15 साल से यूं ही चल रहे हैं और अभी तक हमने खत्म नहीं किए हैं, कम्प्लीट नहीं हुए हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अमल करें, जो जबान देते हैं हम उस पे करें, क्योंकि तभी जाकर इनका विश्वास बढ़ेगा कि भारत सही मायने में चीन के लिए काउंटर हो सकता है। वरना चीन तो अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इनका है उसमें वो 200 बिलियन डॉलर तक की बात कर रहे हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में निवेश करेंगे, भारत तो मुकाबला ही नहीं कर सकता है अगर हम अगर ढीले रहे। तो मेरे ख्याल से अभी सुस्ती का समय खत्म है, और मैं आशावादी इसलिए भी, नरेंद्र मोदी जी एक फुर्ती लाए हैं उन्होंने हमारी रणनीति और कूटनीति है, तो यही अभी गणतंत्र दिवस पर भी नजर आप देखेंगे, और आगे इसका एक जैसे हमने नींव डाली है, उम्मीद रखेंगे कि अगले कुछ सालों में ये जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट खत्म करें और हम और करीब जुड़ जाए, इंटीग्रेशन जो कहते हैं रीजनल इंटीग्रेशन की, जो एक साथ जो एक जोड़ना, तो ये बहुत काम है जो बाकी है और हमें करना होगा
जी। और जैसा श्री राम जी आपने उम्मीद बताई है, तो कह सकते हैं कि जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी जो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनी है, ये ऐतिहासिक कदम उस दिशा में उठ ही चुका है, आगे सफलता मिलेगी ही। और अभी आपको भारत के गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी।
शुक्रिया।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।